हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 25 26 27 एंड 28। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम् रम्याकाचिदुपासना ब्रजवधु। श्री राधिकाया హృదయస్య చూరం అనేక జన్మ జిత పాప చూరం చూరాగ్య వయం పురుషం నమామి శ్రీకృష్ణ శ్యామం మనసాస్మరామి నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దైవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జాయ ముదీరయేత్ నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి యుత్తమ శ్లోకే భక్తిరభవతి నైష్టికి పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూపస్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత కథాధార శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే మూకం కురుతు వాచాలం పంగుం లంఘయతి కిరం యత్ కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానంద మాధవం శ్రీచైతన్య ఈశ్వరం గ్రంథ శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణ కి జయ. ప్రథమ స్కంద అధ్యాయ 19 శ్లోక సంఖ్య 25. అబ్ తక్ హమ్నే యే పడా హై కి మహారాజ పరీక్షిత్ అప్నా సబ్ కుచ్ త్యాగ్ కర్ అప్నే పూరే రాజ్య కో అప్నే పుత్రో కో సౌంప్ కర్ గంగా కే తట్ పర్ ఆమరణ అనశన్ ఉపవాస రఖ కర్ బైఠే హై జహాన్ పర్ అనేక అనేక ఋషి గణ ఏకత్రిత్ హుయే హై ఔర్ సబ్ మునిగణ నే మహారాజ పరీక్షిత్ కో బహుత్ బహుత్ ఆశ్వాసన్ దియా ఔర్ కహా కి హమ్ తభీ తక్ యహాన్ పర్ హీ బైఠే రహెంగే జబ్ తక్ కి आप भगवान के लोक में नहीं चले जाते, हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे. तो महाराज परीक्षित बहुत ज्यादा प्रसन्न थे और सारे ब्राह्मणों को सारे ऋषियों को प्रणाम किया और कहा कि अभी मेरे मन में एक ही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है. मेरे मन में बस एक ही इच्छा है, शुश्रूषमाणस चरितानि विष्णु. मेरी इच्छा है कि मैं भगवान के चरित्रों की, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना चाहता हूँ. इसके अतिरिक्त अभी और कोई मन में अभिलाषा नहीं बची है. तो आप सब कृपा करके, महाराज परीक्षित उन ऋषियों को बोलते हैं कि आप सब तो स्वाभाविक दूसरों का कल्याण करने के इच्छुक होते हैं. आपके मन में बस दूसरों की कल्याण की ही एक इच्छा होती है, इसीलिए आप कोने कोने से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं. परम अनुग्रह मात्मशीलम, आप हम सब मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए हैं और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अंतिम समय पर मुझे आप सबके दर्शन प्राप्त हुए हैं. अब मैं आपसे पूछने लायक बात पूछ रहा हूँ. ततश्च प्रेच्यमिमं विप्रेच्ये, वास्तविक बात जिसके लिए मेरे मन में अभिलाषा हो रही है जानने की, वो क्या है? विश्रेभ्य विप्रा अतिकृत नित्यतायाम। आप सब आपस में विचार विमर्श करके मुझे एक बात बताइए। सर्वात्मनामेयमाणस्य कृत्यम्। दो प्रश्न कह रहे हैं। सर्वात्मना मतलब सभी जीवों के लिए, सभी अवस्था में, सभी काल में, सभी समय पर, और म्रियमाणा स्पेशली जो लोग मृत्यु के निकट हैं, उनके लिए क्या कर्तव्य है। यानी एक प्रश्न ये है कि सभी अवस्था में सब जीवों का सब काल में क्या कर्तव्य है, और स्पेशली जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनका क्या। शुद्धम चतत्रा मृषता भी युक्ता। आप सब आपस में सही तरह से पहले विचार विमर्श करके जो शुद्धम यानी फिल्टर करके एक बात बताइए कि क्या मेरा कर्तव्य क्या है अभी, क्योंकि मैं मरणासीन हूँ, और जीवों का क्या कर्तव्य है। इतना सुनने के बाद सारे ऋषि वहाँ पर, अनेक अनेक ऋषि एकत्रित हुए थे, हम गणना नहीं कर सकते, बहुत सारे ऋषिगण वहाँ पर एकत्रित थे। तो सब ऋषि अपने अपने मत अनुसार सब आपस में बात करने लगे, सब ऋषियों के बीच में एक दूसरे से वार्तालाप चलने लगा। कुछ ऋषि कह रहे थे कि महाराज के पास बहुत सारा धन है, महाराज को दान करना चाहिए, दान सबसे बड़ा, दान करते हैं तो हमारा परमार्थ सुधरता है। वास्तव में भक्तों, दान हम समझते हैं कि हम दान देते हैं तो धन कभी कम नहीं होता दान देने से। ये जो दान का एक पैसा भी जब हम किसी शुद्ध ब्राह्मण को या शुद्ध भक्त को दान में देते हैं ना, जो भगवान की सेवा में लगता है, वो करोड़ों गुना बढ़ जाता है, उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा है। हम चाहे अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपनी संतान, कितना भी पैसा खर्च करते हैं उसका कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी धन जब हमारा भगवान की सेवा में लगता है तो भगवान जो है उसको करोड़ों गुना डबल ट्रिपल करके हमको देते हैं, ताकि वो सब वो कभी भी क्षय नहीं होता। बाकी जो भी हम धन दान करते हैं वो क्षय हो जाता है, मतलब बाकी जो धन होता है उसको यूज करते हैं वो उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन जो धन आपका भगवत सेवा में लगा है वही आपका कल्याण करेगा। तो कुछ ऋषियों ने कहा कि महाराज परीक्षित को दान करना चाहिए, कुछ बोल रहे थे नहीं नहीं इनको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपो पावनानी मनीषण। जो पवित्र लोग हैं उनको यज्ञ दान और तपस्या से पवित्र किया जाता है। तो कुछ ने कहा यज्ञ करना चाहिए, कुछ ने कहा दान करना चाहिए, कुछ ने बोला नहीं तपस्या करनी चाहिए, 7 दिन का समय है बस इनको बैठ के तपस्या करनी चाहिए। कुछ बोलने लगे नहीं इनको अष्टांग योग करना चाहिए, है ना, यम नियम धारणा समाधि ये सब करना चाहिए। कुछ बोले नहीं ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, इनको अभी एकांत में बैठकर ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। और कुछ बोले थे नहीं निकल जाना चाहिए तीर्थ यात्रा के लिए। मतलब सारे ऋषिगण जो है वो अपने अपनी मति के अनुसार बता रहे थे, वन पॉइंट नहीं बता रहे थे एक बात। हालांकि उन्होंने कहा महाराज परीक्षित ने कि आप लोग मुझे एक बात बताओ, शुद्धम तत्रा मृषता भी युक्ता। एक बात जो एक जो रियल कर्तव्य है मेरे लिए वो आप मुझे कृपया मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में, और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला उसके कर्तव्य के विषय में आप बताइए कि क्या करना है। तो वो सब एक दूसरे से पूछ ही रहे थे, विचार विमर्श ही कर रहे थे कि अचानक महाराज परीक्षित के सौभाग्य का सूर्योदय हो गया। यहाँ पर महाराज परीक्षित ने इच्छा की थी कि मुझे कथा सुननी है, मैं अपने हृदय को कृष्ण के चरणों में लगाना चाहता हूँ, और सारे ऋषिगण अपनी अपनी मति के अनुसार कुछ बता रहे थे। महाराज परीक्षित की परीक्षित को आनंद नहीं आ रहा था इस बात पे, क्योंकि वो जानते थे कि नहीं ये मेरे कल्याण का कार्य नहीं है। मेरे कल्याण का कार्य तो कुछ ऐसा है कि मैं बस वो ऐसा हो जाए कुछ कि मैं कृष्ण के विषय में श्रवण कर सकूं। तो ये ऋषिगण इस पॉइंट पर नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारी जब वास्तव में इच्छा होती है ना, जब इच्छा तीव्र होती है ना, तो प्रकृति जो है वो सारी प्रकृति मिलकर हमारी सहायता कर रही होती है उस इच्छा को पूरी करने, और स्पेशली जब इच्छा भगवत प्राप्ति की होती है, भगवत कथा श्रवण करने की होती है, फिर तो समझो कि स्वयं भगवान हमारी सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेषामे वानुकम्पात, मैं उनके ऊपर विशेष कृपा करता हूँ। तो जो भगवान के विषय में श्रवण करना चाहते हैं, उनको भगवान कभी भी निराश नहीं करते। तो अभी क्योंकि महाराजा परीक्षित की इच्छा थी, और उस समय अचानक से कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ वो हम श्लोक में पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 25। मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुत गोस्वामी कहते हैं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदेच्छया गामटमानो नपेक्षे अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालय अवधूतवेश तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदेच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालय अवधूतवेश तत्रा भवत, अचानक वहां पर प्रकट हो गए, आ गए। कहां से आ गए कुछ पता नहीं, वो तो विचरण करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। अचानक वहां पर तत्रा भवत कौन, भगवान परम भागवत, भगवत प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण व्यास पुत्र, वेद व्यास जी के पुत्र परम भागवत श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर पधारे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि भागवत के परम जो वक्ता हैं सुखदेव गोस्वामी, उनके विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा को देखते हुए भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को वहां पर कैसे आए, यदृच्छया, यदृच्छया मतलब अपने आप ही आ गए, भगवत इच्छा से आ गए, भगवान की प्रेरणा से आ गए। कोई यदृच्छया का मतलब है कोई उनका संकल्प नहीं था कि महाराजा परीक्षित यहाँ पर होंगे, आए हैं। मैं जिस तरह दूसरे ऋषि महाराजा परीक्षित के विषय में श्रवण करके आ गए थे, या कुछ उनको सलाह देने के लिए, या बस उनका कल्याण करने, इनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं, इच्छा शून्य थे, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं, अनपेक्षा, गाम टमानो अनपेक्षा, घूमते फिरते रहते थे, उन वो जड़ की तरह रहते थे, मतलब कोई गाम कहते हैं पृथ्वी को, और अटमाना मतलब निरंतर विचरण करते रहते, अनपेक्षा उदासीन है, कोई इच्छा नहीं उनके मन में, किसी के विषय में नहीं सोचते, बस वो तो अलक्ष्यलिंगो, अलक्ष्यलिंगो का मतलब है उनको देखकर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। वर्णाश्रम का कुछ पता नहीं उनका चल रहा था कि ये वानप्रस्थ है, ग्रस्त है, सन्यासी है या ब्रह्मचारी, कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है, क्योंकि सन्यासी का एक अलग चोला होता है, ग्रस्त का एक अलग दिखने में पता चलता है, कुछ भी अलक्ष्यलिंग। और कोई तो संत ऐसे बता रहे थे कि उन्होंने कुछ भी पहना हुआ नहीं था, बस एक छोटा सा कोपिन धारण किया होता, तो उनसे पता नहीं चल रहा था, इतने सुंदर थे पता ही नहीं चलता था लड़का है या लड़की है। तो निज लाभ तुष्टो, लाभ तुष्टो का मतलब है, निज लाभ संतुष्ट का मतलब है कि जो भगवान की भक्ति और भगवान के प्रेम से सराबोर हो, परिपूर्ण हो, वास्तव में तो हम भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करने की जो नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं, सदैव सोचते हैं कि ये प्राप्त करके हम आनंदित हो जाएंगे, लेकिन वह वस्तु प्राप्त हो भी जाए यदि परिपूर्ण मात्रा में तो भी आनंद संभव नहीं है। आनंद तो केवल कृष्ण के प्रेम में है, कृष्ण की भक्ति, फिर कुछ भी नहीं हो। उनके पास कुछ भी नहीं था, दिगंबर थे, कुछ पहनने तक का नहीं था उनके पास, तो फिर भला उनकी धन राशि की तो बात ही क्या कहनी है ना। उनके पास घर नहीं था, उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं था, उनके पास खाने के लिए कोई इच्छा नहीं थी अनपेक्षा, लेकिन फिर भी संतुष्ट तृप्त थे। वास्तविक सुख, वास्तविक तृप्ति जीव को तभी प्राप्त होती है जब वो भगवान की भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है, जब कृष्ण के प्रेम में वो गदगद हो रहा होता है, हृदय तभी संतुष्ट होता है, आत्मा तभी तृप्त होती है। तभी वे कहते हैं अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृत्तश्च बालैर अवधूतवेश। वृत्तश्च गिरे हुए थे और वे थोड़े और बच्चे उनके साथ साथ आ रहे थे, बच्चे उनके साथ साथ रहते थे जहां भी वो जाते थे, छोटे थे 16 साल के थे, और जहां पर भी वो जाते थे तो बच्चे उनके साथ साथ जाते थे। उनका स्वरूप ऐसा था, ऐसा सौंदर्य, ऐसा लावण्य था कि कोई भी उनकी ओर आकर्षित हो जाता, और बच्चे उनको देखकर हैरान हो जाते थे, पूछते थे उनसे, वो किसी से बात नहीं करते थे, बच्चे पूछते थे आपका नाम क्या है, वो नहीं बताते थे, फिर बोलते थे आप कहाँ से आए हो, आपका गांव क्या है, तब भी वो नहीं बताते थे। फिर वो सोचते थे, दूसरे बच्चे को बोलते थे बेचारा गूंगा है, शायद बोल नहीं सकता, तब वो दूसरा जो है वो उससे पूछता था कि आपके माता पिता कहाँ पर हैं, तो वो उत्तर नहीं देते थे। फिर वो कहता था शायद बेरा भी है, सुन भी नहीं रहा है, और कभी कभी वो चलते चलते लड़खड़ाते थे, तो कोई बोलता शायद इसे दिखता भी नहीं, अंधा है क्या। सब लोग उसके ऊपर तरस खाते थे कि कितना सुंदर युवक है और न सुन सकता है, न बोल सकता है और न देख सकता है, लेकिन उनका स्वरूप ऐसा था कि हर वक्त वो घिरे हुए रहते थे बच्चों से। वृत्तश्च बालैर अवधूत वेश, अवधूत वेश होता था, पहनते उड़ते कुछ नहीं थे, बस भगवान की भक्ति में संतुष्ट होते थे। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो परम भागवत हैं, परीक्षित महाराज का परम सौभाग्य, उनके कुल के पुरखों का ढेर सारा भक्ति का पुण्य एकत्रित होकर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के स्वरूप में परीक्षित महाराज के समक्ष तत्राभवत उनके सामने प्रकट हो गया है। अनुवाद देखिए, उसी समय व्यास देव के शक्तिशाली पुत्र वहां प्रकट हुए जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण कर रहे थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था की या जीवन स्तर वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं था। वे सदैव स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे रहते थे और इस प्रकार का वेश धारण किए रहते थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित अवधूत समझ रखा था। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पे बताया तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं है कि खाली भगवान के लिए ही यूज होता है, ये शब्द ऐसा है कि वो भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भी यूज होता है, लेकिन जब शास्त्र में लिखा होता है श्री भगवान, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है राधा रानी, तो वो सिर्फ भगवान के साथ कृष्ण के साथ ही लगता है। श्री भगवान यदि है तो केवल कृष्ण की बात हो रही, बाकी जो भगवान शब्द है वो नारद मुनि के लिए यूज होता है, कभी कभी शिव जी के लिए और कभी कभी सुखदेव गोस्वामी के लिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के मामलों में उदासीन रहते हैं क्योंकि वे भक्ति की महान उपलब्धियों से आत्मसंतुष्ट रहते हैं, उनके पास भगवान की भक्ति होती है, भगवान का प्रेम होता है। और किसी को यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है फिर वो इतना संतुष्ट हो जाता है कि भौतिक किसी वस्तु की उसको आवश्यकता क्या इच्छा तक नहीं रहती। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सुखदेव गोस्वामी ने ना तो कोई औपचारिक गुरु बनाया ना ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। शुरू शुरू में जब सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए थे तब वो जब उनका जन्म हुआ था तभी उपनयन संस्कार इत्यादि जनेऊ इत्यादि किए बगैर ही वो निकल गए थे। तो इसीलिए बताया अलक्ष्य लिंग, पता ही नहीं चलता था कि वो ब्राह्मण हैं, उन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया था, उन्होंने कोई वेश धारण नहीं किया था। उनके पिता व्यास देव उनके नैसर्गिक गुरु थे क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद भागवतम उन्हीं से सुना था। इसके बाद वे पूर्णतया आत्मतुष्ट बन गए, इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि के आश्रित न थे, वो संतुष्ट हो गए। वास्तव में भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद हृदय के अंदर जो कृष्ण प्रेम होता है वो इतना बढ़ जाता है, कृष्ण के अंदर आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि जीव उस आसक्ति की कृष्ण के प्रेम से संतुष्ट हो जाता है, फिर किसी औपचारिक तक की आवश्यकता नहीं होती। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक हैं जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से सदैव उसी अवस्था में रहते। उनके पिता वेद व्यास जी थे और उनकी कृपा से उन्होंने भागवत श्रवण किया था जिसके कारण वो सदैव आनंदित रहते थे, सदैव संतुष्ट रहते थे, उनको किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि औपचारिकता किसके लिए होती है, जो मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते थे और किसी सामाजिक प्रथा में रुचि ना दिखाते थे। अभी यंग एकदम युवान युवक जो होते हैं वो इस तरह से दिगंबर कहीं फिरते नहीं हैं, तो सब लोग की यही होती थी उसके साथ यही उपेक्षा होती थी जो यंग होते तो उनके साथ, लेकिन लोग ऐसे सोचते थे उनको देखकर बेचारा कितना सुंदर है, लगता है इसका कोई नहीं है, बेरा है गूंगा है और ऐसा लगता है शायद पागल हो गया है, सब तरस खाते थे उनके ऊपर। तो क्योंकि वो इस तरह का वेश धारण किए होते थे और किसी के सामने कुछ बोलते नहीं थे, बताते नहीं थे कि मैं कौन हूँ या कुछ भी बोलने का उनको लगता ही नहीं था, वो संतुष्ट होते थे। सामान्य जनता उनकी उपेक्षा करती थी किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से घिरे रहते थे जैसे कोई पागल हो। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तो क्योंकि युवक थे तो स्त्रियां होती थी वो उनसे पूछती थी क्यों इस तरह से घूम रहे हो, घर जाओ कपड़े पहन के आओ, ऐसे क्यों कोई उसको, वो किसी को उत्तर नहीं देते थे। बालक भी उनसे पूछते थे आप कहाँ रहते हो आपके माँ, तो कोई भी उनको उत्तर वो देते नहीं थे और इस तरह से बस घूमते रहते थे। क्या करते रहते थे, गांव डमोनो बस ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो ऐसे घूमते घूमते विचरण करते करते वो यहाँ पर पहुंचे थे। महाराजा परीक्षित की जिज्ञासा से प्रतीत होता है कि महर्षिगण एकमत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार के नुस्खे बताते हैं किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्धि उस परम सिद्ध अवस्था से प्राप्त होता है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं उसी प्रकार मुनियों में भी मतैक्य नहीं है। जब ये सारी बातें चल रही थी तभी व्यास देव जी के शक्तिशाली तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। तो यहाँ पर मुनि आपस में वार्तालाप कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे और वहां पर तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, भगवान शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अब यहाँ पर श्री सूत गोस्वामी हमें शुकदेव गोस्वामी के दर्शन करा रहे हैं। अत्यंत सुंदर रूप लावण्य के दर्शन। हमारा परम सौभाग्य है कि हम शुकदेव गोस्वामी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर उनके एक एक अंग के विषय में भी बताते हैं। तम द्विष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुवाहु वस कपोल गात्रम चार्व्यायताक्षोन्न सुतल यकर्ण संभ्रोवनानं सुब्रुवाननं कुंभुसुजा तकंठं तं द्विष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाहु सकपोलगात्रं चार्वायता क्षुन्नसुतल सतुल्यकर्णम् सुभ्रुवाननम् कुम्कम्बुसुजातकंठम् तम द्विष्ट वर्षम्। द्विष्ट यानी 16 साल के, वो 16 साल के नवयुवक थे और कैसे थे? सुकुमार पाद, उनके चरण कमल बहुत ही कोमल थे। करोर उनके हाथ, उरु उनके जांघे, बाहु उनकी भुजाएं, अंश उनके कंधे, कपोल अर्थात मस्तक, गात्रम अर्थात शरीर, चारु बहुत बहुत सुंदर उनके हाथ, उनके पैर, उनकी जांघे, उनकी भुजाएं, इतनी सुंदर और सुकोमल थे, अत्यंत सुंदर। आयत चौड़ा अक्ष, उनकी आंखें बड़ी बड़ी आंखें थी उनकी, और उन्नस ऊंची नाक थी, तुल्य एक से कर्ण, बहुत ही सुंदर कान थे, और सुब्रु ऊंची भवे जो थी वो बहुत ही ऊंची थी, आननम यानी चेहरा मुखमंडल बहुत ही सुंदर, और कंभु शंख की तरह सुजात अच्छी तरह से बना हुआ कंठ, उनका जो कंठ था, गला जो था वो बहुत ही सुंदर शंख की तरह लगता था, मतलब उनका एक एक अंग जो था वो बहुत ही सुंदर था। अनुवाद देखिए, श्री व्यास देव जी के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत ही सुकुमार बने थे। उनकी आंखें सुंदर बड़ी बड़ी तथा नाक और कान अत्यधिक उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत ही आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख के जैसी सुंदर थी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांव से शुरू होता है। क्या बोलते हैं? सुकुमार पाद, पांव से शुरू किया जाता है। इसे वेद व्यास जी अपने पुत्र के विषय में बता रहे हैं। यहाँ पर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की और सूत गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं, चरणों से शुरू कर रहे हैं कि उनके चरण कमल बहुत ही कोमल थे। और यह सम्मानित प्रणाली शुकदेव गोस्वामी पर भी लागू होती है। वे केवल 16 वर्ष के थे। पुरुष का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, ना कि बड़ी आयु के लिए। पुरुष अनुभव के आधार पर अधिक सया न हो सकता, आयु से नहीं। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी की सराहना कर रहे हैं कौन, वेद व्यास से, सूत गोस्वामी। हालांकि सुखदेव गोस्वामी की आयु सबसे पहले बता रहे हैं कि उनकी आयु छोटी सी थी, तम द्विष्ट वर्ष। अभी कोई बड़ा वृद्ध स्पेशली सूत गोस्वामी या सुखदेव वेद व्यास जी, वो अपने से इतने छोटे व्यक्ति का के, उनका सम्मान करें और वो भी चरणों से स्टार्ट करें कि वो इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। वास्तव में यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते, सम्मान आपकी आयु का नहीं हो रहा है, आप भक्ति में कितना उन्नत हो, अनुभव कितना है, आध्यात्मिक उन्नति कितनी की है, उसके अनुसार ही उसका सम्मान किया जाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी जिन्हें यहाँ पर वेद व्यास के पुत्र रूप में बताया गया, व्यास पुत्रों, अभी वो वेद व्यास जी के पुत्र हैं, अपने ज्ञान के आधार पर वहाँ उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे। यद्यपि सभी वे केवल 16 वर्ष, तभी वे केवल 16 वर्ष के थे। अभी यहाँ पर इतनी सारी ऋषिगण आए हुए हैं, इतने सारे मुनिगण जिनके हमने नाम पढ़े थे, बहुत सारे विश्वामित्र, गर्गाचार्य, विशिष्ट मुनि सब, लेकिन किसी के विषय में ऐसा वर्णन नहीं हुआ जैसा यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का हो रहा है। मतलब सारे ऋषियों में ये सबसे ज्यादा सम्मानित हो जा रहे हैं, तो अर्थात उनका दिव्य, उनका आध्यात्मिक उन्नति उनकी इतनी है, आत्म साक्षात्कार इतना है, उनका भगवत साक्षात्कार इतना तीव्र है कि प्रत्येक, अभी यहाँ पर सारे ऋषिगण जो है उनका सम्मान करेंगे, लेकिन पहले अभी तक जी नहीं भरा है सूत गोस्वामी का उनकी प्रशंसा, उनके दर्शन कराने से। तो वे कहते हैं, निगूढ चतुर्म पृथुतंग वक्षस, निगूढ चतुर्म पृथुतंग वक्षसम आवर्तनाभिम वलिवल्गूदरम च दिगंबरम वक्तवीकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वमरुत्तमाभम निगूढ जत्रुम पृथुतुंग वक्षसम आवर्तनाभिम वलिवल्गूदरम च दिगंबरम वक्त्रवीकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वमरुत्तमाभम निगूढ जत्रुम। मतलब उनकी जो ये शोल्डर जो होते है ना, जैसे कंधे की जो हड्डी होती है, तो निगूढ़ यानी आवृत थी। ऐसा नहीं कि दुबले पतले हों, यहाँ से बिल्कुल खाया पिया कुछ नहीं मरीज की तरह, ऐसे नहीं, आवृत थी यानी कि सही लग रहे थे, जानदार लग रहे थे। पृथु तुंग, पृथु यानी बहुत ही चौड़ी थी, तुंग और उठी हुई थी, क्या वक्षसम उनकी जो छाती थी, सीना जो था वो चौड़ा था, उठा हुआ था। आवर्त यानी भवरादार, लहरादार, क्या नाभि, उनकी जो नाभि थी वो बहुत ही सुंदर ढंग से बनी हुई थी। वली वल्गु उदरम, उनका जो उदर था, पेट था, तो उस तरह से मोटा नहीं था, बल्कि बहुत ही सुडोल था, बहुत अच्छे तरीके से। वली वल्गु यानी कि धारीदार होता है, ऐसे जैसे धार बना होता है यहाँ से लेकर सीधा इस तरह से, तो उनका सीधा पेट था, मोटा नहीं था। और च दिक अंबरम, अधिक अंबरम यानी दिशाएं, दिगंबर, दिगंबर का मतलब होता है अंबर ही जिसका वस्त्र हो, यानी कि वो कोई वस्त्र पहने हुए नहीं थे, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो, अंबर कहते हैं वस्त्र को, और दिग यानी सारी दिशाएं। आगे वक्त्र यानी कुचित घुंघराले, वक्त्र कीर्ण केशम, विकीर्ण यानी चित्रे थे, बिखरे थे, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कृष्ण की तरह अपने बालों में जूड़ा बनाया होगा और वहां पर मोर पंख, नहीं ऐसा नहीं, वो बहुत सुंदर थे, उनके बाल भी गुंगराले थे, लेकिन विकीर्ण केशम बिखरे हुए थे। प्रलंब बाहुम, उनकी बाहू काफी लंबी थी, हाथ जो थे लंबे थे। सुअमर उत्तमा, सुअमर यानी देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ है, अमर कहते हैं देवताओं को, और उत्तम यानी जो सबसे श्रेष्ठ है अर्थात कृष्ण। आभम, देखने में ऐसा लग रहा था कि वो साक्षात कृष्ण लग रहे थे, कृष्ण जैसा ही उनका सौंदर्य था, वो बहुत ही सुंदर थे बिल्कुल। अमरोत्तमावस, तो वो कृष्ण के जैसे लग रहे थे। कृष्ण में और उनमें फर्क कितना था कि कृष्ण अपनी सौंदर्यता को छुपाते हैं, है ना? ये जो वस्त्र और आभूषण यशोदा मैया कृष्ण को पहनाती है ना, वैसे तो हम लोग जब वस्त्र और आभूषण पहनते हैं तो उसका कारण होता है कि हम इन वस्त्रों और आभूषणों के द्वारा सुंदर दिखना चाहते हैं, परंतु कृष्ण जो है उनका इतना सौंदर्य है कि यशोदा मैया ये सब वस्त्र आभूषण लाद कर उनको उनकी सुंदरता को छिपाने का प्रयास करती है। परंतु यहाँ पर तो सुखदेव गोस्वामी दिगंबर है, पूरे के पूरे दिख रहे हैं, एक एक अंग का यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि उनकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी थी, उनके भुजाएं इतनी लंबी थी, सीना चौड़ा था, पेट कैसा था, उनका उनकी गर्दन कितनी सुंदर थी, उनके होंठ इतने सुंदर थे, उनके चरण कमल इतने सुकोमल थे। तो एक एक अंग के विषय में यहाँ पर बताते हुए कहते हैं ऐसा लग रहा था कि साक्षात कृष्ण है। अनुवाद, उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था, उनकी भुजाएं लंबी थी, उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे, वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। श्रील प्रभुपाद देखी, श्रील प्रभुपाद जी कहते उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बतलाने वाली थी। सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक रचना के से संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे असामान्य लक्षण हैं और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी थी जो देवों देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। स्व अमरो अमरोत्तमा बस बम, तो सबसे ज्यादा जो सुंदर हैं कृष्ण उनके जैसे वो लग रहे थे। आगे सुत गोस्वामी उसी के उन्हीं के विषय में बता रहे हैं, वे कहते हैं श्यामम सरापि व्यवायु गलक्ष्मया स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेना प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः तलक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम् श्यामं सदापि व्यवायु गलक्ष्मया स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेना प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम् श्यामम्। श्यामम का मतलब होता है श्यामल, सदा पी व्यवयो मतलब सदैव अत्यधिक, मतलब उनकी आयु सदैव इतनी 16 साल की रहती है, वो सदैव युवक जैसे लग रहे थे, और उसके क्योंकि वो युवा अवस्था में थे उनके कार इस अवस्था के कारण वो और भी ज्यादा आकर्षण कर रहे थे। हर कोई उनकी ओर आकर्षित हुए बगैर रह नहीं सकता था, उनका एक एक अंग जो है वो
आकर्षित कर रहा था किसको, स्त्रीणाम मनोक्यम रुचि रसमें स्त्रियाम, यानी जो वहां पर अगर कोई स्त्री होती थी तो स्त्रियों का मनोज्ञम उनको आकर्षण होता था, उनका मन जो है वो उसकी ओर दिखने को दिल करता था। इतने सुंदर थे, लग रहे थे, इतने युवक थे कि वहां से स्त्री कोई जाती थी तो उनको देखे बगैर उनकी उनका मन नहीं भरता था, ऐसा लगता था कि देख रुचि रस में थे ना, और उनका उनका मुखमंडल ऐसा क्योंकि वो संतुष्ट थे, आनंदित थे। वरना आजकल हम किसी को देखते हैं उनके मुख में एक स्मित नहीं होती। स्मित का मतलब होता है कि आप हंसो नहीं लेकिन आपके मुख पर एक स्माइल बनी रहे, है ना। आप हंस नहीं रहे हो, आप चुप हो लेकिन आपका आनंद चेहरे से झलक रहा है। तो रुचि रस में तेना, उसी तरह से उनका मुखमंडल इतना स्माइली था, इतना हंस रहे थे, मतलब लग रहा था ऐसा वो चुप थे, वो बात नहीं करते थे लेकिन देखने में ऐसा लगता था जैसे उनकी मुस्कान, मंद मंद मुस्कान जो है वो हृदय को उनकी ओर आकर्षित होने पर विवश कर रहे थे। प्रत्युत्थिता, यानी अब ये वो भले ही कुछ बोल नहीं रहे थे, वो अपने आप को छिपा रहे थे, लेकिन सारे जो ऋषिगण थे वो प्रत्युत्थिता थे, वो खड़े हो गए। मुनयः, जितने मुनि थे, स्व आसने भय, अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? तलक्षण लक्षण ज्ञा, क्योंकि वो सब एक्सपर्ट थे, कोई साधारण लोग वहां पर नहीं आए थे। वो जीव, किसी भी जीव को देखकर, उनके शरीर के ढोल, शरीर के आकृति को देखकर वो समझ जाते थे। अब भी गूढ़ वर्चस्व, वो बलि नहीं बताते थे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताते थे, मैं किसका पुत्र हूँ, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। लेकिन फिर भी लक्षण ज्ञा, उनके शरीर के लक्षणों से ही वो जान गए, इतने एक्सपर्ट थे, सारे पटु थे। अभी गूढ़ वर्चस्व, भले ही वो अपने आप अपनी महिमा प्रकट नहीं की थी उन्होंने, लेकिन फिर भी वो जान गए, इसलिए अपने अपने आसनों से खड़े होकर उनका सत्कार करने लगे। अनुवाद, वे श्यामल वर्ण के तथा युवा अवस्था के कारण अत्यधिक सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे, अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। सब यहाँ पर खड़े हो गए हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ है। समझो परीक्षित महाराज को एक ठोर मिल गया, परीक्षित महाराज को एक दिशा मिल गई। जो चाहते थे कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोई बता दो कि मुझे क्या करना है, तो भगवान ने भेज दिया उसे। भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया कि आपकी मृत्यु को सार्थक करने के लिए, आपको जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भगवान उत्कृष्ट हैं, भगवान उत्सुक हैं कि कब परीक्षित मेरे धाम में आएगा और उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम सब देखेंगे कि आगे क्या होता है। आप सब कृपया मेरे साथ रहिएगा और हृदय से प्रार्थना कीजिए कि मैं आप सबकी सेवा सदैव करती रहूं। हरे कृष्ण।